आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अब से थोड़ी देर बाद पटना के दीघा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले कार्यकाल में देशभर से समाप्त होगा नक्सलवाद और आतंकवाद। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नालंदा, पटना साहिब, जहानाबाद, आरा और काराकाट समेत 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया समाप्त। और राज्य में अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अब से थोड़ी देर बाद पटना के दीघा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। सुशील कुमार मोदी 72 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। पटना पहुंचने पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास और विजय निकेतन संघ कार्यालय लाया गया। बाद में उनका पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में रखा गया। उनके अंतिम संस्कार में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सुशील कुमार मोदी को आकाशवाणी समाचार की एक श्रद्धांजलि।
बिहार की राजनीति में लगभग 5 दशक तक अलग अलग भूमिकाओं में सक्रिय रहे सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। आपातकाल के दौरान वे 19 महीने तक जेल में रहे। वर्ष 1990 में सुशील कुमार मोदी ने तत्कालीन पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उन्हें जीत मिली। सुशील मोदी उन चुनिंदा राजनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। वे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में लगभग 11 वर्षों तक उप मुख्यमंत्री भी रहे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को बिहार की राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। इस साल फरवरी महीने में राज्यसभा में अपने कार्यकाल की समाप्ति के मौके पर सुशील कुमार मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन के सुनहरे पलों को याद किया था।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको इतना मौका पार्टी ने दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली में, 6 साल करीब लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल में रहने का मुझे मौका मिला है और बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री के नाते श्री नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है। मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का मौका मिला है। राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है।
सुशील मोदी को अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए भी जाना जाता था। बिहार के वित्त मंत्री रहते हुए उनके द्वारा लिए गए कई फैसले नजीर माने जाते हैं। जुलाई 2011 में वे जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना जताई है। समाचार कक्ष से संतोष कुमार झा।
लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने देश में नक्सली हिंसा पर रोक लगाई है। श्री मोदी झारखंड के कोडरमा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में वे नक्सलवाद और आतंकवाद पर और कड़ा प्रहार करेंगे।
ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब हौसला फौलादी हो तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चुमने लग जाती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को ये गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है।
इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के कारण आज पार्टी के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तबीयत खराब होने के चलते सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। इधर एनडीए गठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने संयुक्त रूप से मधुबनी और सीतामढ़ी में उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का काम आज समाप्त हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इधर पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अविजित ने भी अपना पर्चा भरा। सातवें चरण में राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में चुनाव होने हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। वहीं उम्मीदवार 17 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण में 1 जून को मतदान होना है। छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह आज औपचारिक रूप से जदयू में शामिल हो गए। पटना में आयोजित मिलन समारोह में उन्हें जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। श्री सिंह ने पिछले दिनों राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात सीवान लोकसभा सीट की। सीवान बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली सीवान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1957 में अस्तित्व में आए इस लोकसभा सीट पर शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दबदबा रहा। वहीं एक दौर में ये सीट बाहुबली शहाबुद्दीन को लेकर भी काफी चर्चा में रही। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर भाजपा और जदयू को जीत मिलती रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीवान से जदयू की कविता सिंह को जीत थी। उन्होंने राजद के हिना शहाब को पराजित किया था। हिना शहाब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। इस बार एनडीए में सीट बंटवारे के तहत ये सीट जदयू के खाते में आई है। पार्टी ने निवर्तमान सांसद कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया है। विजय लक्ष्मी देवी जीरा देवी से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है और पिछले दिन उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छोड़कर जदयू में शामिल हुई है। वहीं विपक्षी गठबंधन ने राजद से पूर्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री चौधरी वर्तमान में सीवान सदर से विधायक हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। सीवान सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन जदयू की विजय लक्ष्मी देवी, राजद के अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हेना शहाब के बीच ही त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। विधानसभा वार स्थिति देखें तो लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 5 सीटों पर विपक्षी गठबंधन के विधायक हैं। सिर्फ एक सीट पर भाजपा का कब्जा है। सीवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया पर राजद को जीरा देई और दरौली पर भाकपा माले का कब्जा है। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र का पिछड़ापन, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन प्रमुख है, लेकिन इन मुद्दों से अलग सभी प्रत्याशी सामाजिक समीकरणों की बदौलत अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के लगभग 19 लाख मतदाता जदयू की विजय लक्ष्मी देवी, राजद के अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हेना शहाब में से किसके सर जीत का सेहरा बांधते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सीवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वसीम अहमद।
भारतीय जनता पार्टी ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ फेसबुक पर गलत खबर चलाने को लेकर पटना के कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मुकेश सहनी ने वीआईपी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के उनके पार्टी में शामिल होने की खबर साझा की है, जो पूरी तरह निराधार है। राज्य में अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जमीन की खरीद बिक्री तभी हो सकती है जब जमीन बेचने वाले के नाम जमाबंदी या होल्डिंग हो। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली में संशोधन किया था। संशोधित नियमों के अनुसार जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकती है जब जमीन बेचने वाले और दान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग हो। नए नियम के प्रभावी होने के बाद राज्य में जमीन की रजिस्ट्री में 60 से 70% तक की कमी आ गई थी। रामचरितमानस पंचतंत्र और सौ हृदय लोक लोकन को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि यह समावेशन भारत के लिए गौरव की बात है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय 16 मई से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि यह समय सारणी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। अररिया के विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के मामले में दोषी मोहम्मद बरकत को 5 साल कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इधर शेखपुरा की उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के मामले में उपेंद्र कुमार को दोषी ठहराया है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा घाट में सिकराना नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के उसराह चोटली जमींदारी बांध के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से लगभग 4 लाख रुपए और मोबाइल लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अब से थोड़ी देर बाद पटना के दीघा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले कार्यकाल में देशभर से समाप्त होगा नक्सलवाद और आतंकवाद। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नालंदा, पटना साहिब, जहानाबाद, आरा और काराकाट समेत 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया समाप्त। और राज्य में अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।